ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच एकदा गृहदासीसु यशोदानन्दगेहिनी कर्मान्तर्नियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुखल बंधन की लीला प्रारंभ की जा रही है। एकदा गृहदासी सु यशोदा नंद गृहिणी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधि। एक बार माँ यशोदा अपने घर की दासियों को दूसरे कार्य में लगाकर स्वयं दही मथने लगी, स्वयं दधि मथने लगे। गृहदासी सु कर्मांतर नियुक्ता सु, यशोदा के घर में अनेक दासियां थी जो दधि मथा करती थी, क्योंकि नंद बाबा की 9 लाख गौएं थी तो उसमें से कई लाख तो जरूर दूध देती रहती होंगी, तो उन सब का दूध है जमाना, दही बनाना और मथना, इसके लिए बहुत बहुत दासियों की जरूरत है। तो यशोदा की कुछ है विशिष्ट दासियां थी जो कृष्ण की सेवा के लिए थी, और वे कृष्ण के लिए नवनीत निकाला करती थी, दही से दही मथती थी, नवनीत निकालती थी। तो माँ यशोदा के पास जब अन्य घरों से बार बार कंप्लेन आ रहा था कि कृष्ण हमारे घर में चोरी किया, हमारे घर में चोरी किया, हमारा दही खा गया, माखन खा गया, यह सुनते सुनते माँ यशोदा के मन में एक शंका उदित हुई कि हो न हो हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, इसी से कृष्ण दूसरे के घर में जाता है। माँ के मन में ये शंका उत्पन्न हो, हमारे घर का दही अच्छा नहीं जमता है या मक्खन अच्छा नहीं होता है, इसी से दूसरे के घर में जा रहा है, नहीं तो हमारा बच्चा दूसरे के घर में क्यों जाएगा। माँ को यह पता नहीं था कि उनका बच्चा दूसरों के प्रेम के कारण जाता है, माखन के कारण नहीं जाता है। लेकिन सहज ही हितैषिणी होने के कारण माँ के हृदय में ये शंका हो गई। तो उसने सोचा कि अपने हाथ से स्वयं ही दही जमा करके और खूब सुंदर माखन निकाल करके खिलाऊंगी और रोज ऐसा करूंगी, प्रतिदिन ऐसा करूंगी, तो इससे हो सकता है मेरे बच्चे की चोरी छूट जाए, वो दूसरे के घर में चोरी ना करे। तो माँ यशोदा एक दिन स्वयं दही मथने लगी, निर्ममंथ स्वयं दधि, स्वयं दधि निर्ममंथ, स्वयं दही मथने लगी। यशोदा एक रानी है, एक रानी के लिए दही मथना ये स्वाभाविक काम नहीं है, लेकिन नंद महाराज की गेहिनी नंद रानी होने के बावजूद भी ये दही मथने लगे। एकदा, संस्कृत में दा का अर्थ होता है समय, काल, सर्वदा, एकदा, जदा, कदा, दा माने समय, एकदा माने एक समय, जदा माने जिस समय, कदा माने किस समय, सर्वदा माने सब समय। तो एकदा का अर्थ एक समय, एक दिन माँ यशोदा स्वयं दही मथने लगे। यह प्रश्न होगा कि अन्य दही मथने वाली जो दासियां थी वो क्या कर रही थी, तो कर्मांतर नियुक्ता, कर्मांतर दूसरे सेवा में लग गई। उनको माँ ने कहा कि तुम लोग दूसरा काम कर लो, कृष्ण के लिए जो माखन निकालना है वो मैं निकालूंगी। वे बेचारी पूर्ण आनंद के साथ और पूरा परिश्रम करके अच्छा माखन निकालती थी, लेकिन माँ को ये संदेह हो गया कि अच्छा माखन नहीं निकल रहा है, इसलिए वो स्वयं दही मथने लगी। यहाँ एकदा से तात्पर्य है कार्तिक महीने की दीपावली, जो कार्तिक महीने में अमावस्या आती है उसको दीपावली कहते हैं, उसी दिन कृष्ण को बांधा गया था, उसी दिन वे दही का भांड बर्तन फोड़े थे। एकदा से तत्पर जो अमावस्या से है दीपावली के दिन, जिस दिन माँ जसोदा अपने पुत्र के लिए माखन दही मह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी लीलाएं शरद काल में हुई है, रासलीला भी शरद काल में, गोवर्धन धारण भी शरद काल में, उखल बंधन शरद काल में, चीरहरण तो खैर हेमंत काल में हुआ था। इन बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं शरद काल में होती है, वर्षा काल के बाद शरद काल आता है। तो श्री कृष्ण की चोरी को रोकने के लिए, उनको अपने घर में संतुष्ट रहने के लिए दही मथा जा रहा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर नंद गेहिनी शब्द का प्रयोग किया। यशोदा नंद गेहिनी, नंदस्य गेहिनी, नंद महाराज की पत्नी अर्थात नंद रानी। स्वयं शब्द यह सिद्ध कर रहा है कि इनके जो कि यह काम नहीं था, तो दासियां थी तो स्वयं दही मथने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अपने पुत्र को सेटिस्फाई करने के लिए निर्ममन था स्वयं दही मथने लगे। और दही मथते समय श्री कृष्ण के बाल लीलाओं को गाती जाती थी, उसका वर्णन कर रहे हैं। जानी जानी है गीतानी तद बाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। जानी जानी है गीतानी तद बाल चरितानि च, तद बाल चरितानि कृष्ण से बाल चरितानि, जो भी ब्रज में प्रसिद्ध लीलाएं श्री कृष्ण की हो चुकी थी उनको माँ जसोदा गा रही थी। स्वाभाविक ही गान निकल रहा था मुख से, जैसे पूतना उद्धार की लीला, तृणावर्त उद्धार की लीला, या बकरियां चलने की, माखन खाने की, या स्तन पीने की, जो भी वो लीला कर दिए थे उन्हीं लीलाओं को गा रही थी। भगवान के धाम में कोई भी व्यक्ति जब बोलता है तो गद्य में नहीं बोलता है, पद्य में बोलता है। यहाँ तो कोई कोई ऐसा आशु कवि होता है जो किसी बात को कविता में कहता है, जो बहुत जल्दी जिम ही सोचे और कविता बना दे तो उसको आशु कवि कहते हैं। आशु का अर्थ होता है शीघ्र, कवि मतलब कवि, आशु कवि। ऐसे हम कवि देखे हैं जो किसी वस्तु का वर्णन करते हैं और कविता में करते जाते हैं, कविता में, को आशु कवि कहते हैं। इन संसार के अधिकांश ऐसे लोग हैं, कविता की बात तो दूर रही, गद्य में भी कुछ नहीं बोल पाते, बड़ा मुश्किल है इस संसार में। लेकिन भगवान के धाम में प्रत्येक व्यक्ति जो भी बात बोलता है तो काव्य में बोलता है, कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, गोलोक में जो चलना है वो नाटक जैसा होता है, नाचने जैसे, नटनम। भगवान के धाम में कोई व्यक्ति चलता है तो नाचते हुए चलता है, क्योंकि वहां कोई दुख नहीं है, आनंद में रहता है मनुष्य, झूम झूम कर चलता है। और इस संसार में आदमी चलते समय, खाते समय, पीते समय अपने सिर पर भार उठाए रहता है चिंता का, वो नाच नहीं सकता, गा नहीं सकता। और इस जगत में हम लोग देखे हैं कि जब कोई व्यक्ति आनंद में होता है तो कुछ गुनगुनाने लगता है, गाता है या नाचता है। तो वैकुंठ में प्रत्येक व्यक्ति आनंद में रहता है, सुख में रहता है, और जो चीज वो गाना चाहे गा सकता है। क्योंकि वहां जड़ शरीर नहीं होता। तो मां यशोदा श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को गा रही थी। कब गा रही थी? दधि निर्मंथने काले, दही निर्मंथन के समय गा रही थी। इसके द्वारा एक साधन का संकेत है कि यदि मनुष्य को भगवान का कीर्तन करने का समय न मिले तो अपना काम करते समय ही करे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। माँ यशोदा भगवान कृष्ण की सेवा करते समय गा रही, स्मरन्ति तानि अगायत, स्मरण कर रही थी मन में और गा रही थी। दधि निर्मंथने काले, बड़ा सुंदर शब्द है। हम लोगों के भी जीवन में बहुत बहुत कार्य हैं, तो काम करते समय भी गा सकते हैं। सभी कार्यों के समय तो गाना कठिन होगा, कोई किसी ऑफिस में होगा, कहाँ होगा, सब समय नहीं गा सकता है। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कार्य के समय भी भगवान का जस गाया जा सकता है, ये गाना चाहिए। तो माँ के स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसका स्वरूप कैसा है। तो सबसे पहले वर्णन करते हैं, छौमम वास पृथुकटी तटे विभ्रती। छौमम रेशमी लहंगा पहनी हुई है। ब्रज की स्त्रियां आज भी दो वस्त्र पहनती हैं, एक को लहंगा कहते हैं और एक को ओढ़नी कहते हैं। ओढ़नी ऊपर ओढ़ती है और एक लहंगा होता है, बहुत लंबी साड़ी होती है, उसको चुन करके पहनती है। आज भी ब्रज में स्त्रियां ऐसे पहनती, तो उसको छौमम वास पृथु कटी तटे, पृथु कटी तटे विशाल नितंबों पर माँ यशोदा लहंगा पहनी थी और विभ्रती सूत्र नद्धम, और सूत्र से जिसको आज के युग में बेल्ट कहते हैं लोग, वो बांध ली थी। मतलब इसको कहते हैं कमर कस कर तैयार हो जाना। भगवान की सेवा के लिए यशोदा बिल्कुल तत्पर थी, जीवन में आलस्य बिल्कुल नहीं। और यह भोर का समय था, सवेरे का समय, भोर, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, उसी समय यशोदा उठकर कृष्ण के लिए परिश्रम कर रही है, दही मात रही थी। लाला जगेगा तो जगते ही उसको ताजा ताजा माखन खिलाऊं, ये सोच करके भोर में वो मच रही थी। तो रेशमी वस्त्र इसलिए पहनी थी कि रेशमी वस्त्र शुद्ध माना जाता है, कोई इस कार्य में कमी न रह जाए, इसके लिए भी वो वस्त्र पहने। सूत्र नब्द बहुत कड़ा बांध करके, एक करधनी से बांध करके। पुत्र स्नेह स्मृत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्र, और माता यशोदा के दोनों स्तन हिल रहे थे और उनसे दूध चुचुआ रहा था, दूध चू रहा था। माँ यशोदा के स्तनों से दूध चू रहा था। तो अप्राकृत जगत की प्रत्येक वस्तु चिन्मय है, वह जड़ नहीं है, वहां प्रत्येक वस्तु स्वरूप शक्ति का अधिकार है, इसलिए सब कुछ चिन्मय है। तो माँ यशोदा के स्तन में जो दूध है वो ये सोच रहा था कि आज माता यशोदा माखन निकाल रही है, तो माखन इतना अच्छा होगा कि कृष्ण उसको खा करके संतुष्ट हो जाएंगे, तो मैं मुझको नहीं पिएंगे, हमको नहीं पिएंगे, माँ का दूध ही सोच रहा था, इसलिए वो बाहर आ रहा था। बाहर आ रहा स्नेह, पुत्र स्नेह स्मृत कुछ जुगम, दोनों स्तनों से दूध चू रहा था पुत्र के स्नेह के कारण। जात कंपम च शुभ्र, और दोनों स्तन कांप रहे थे, हिल रहे थे। दही मथने में माँ यशोदा तन्मय थी। तो सुखदेव गोस्वामी माँ यशोदा का चित्र खींच रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं कि उनका लहंगा कैसा है, उनके स्तन कैसे हैं, और रज्वा कर्ष श्रम भुज चलत कंकरव कुंडले च, रज्जु आकर्ष जब रज्जु खींच रही हैं, रस्सी खींच रही हैं, तो उसके चलते उनके हाथों की चूड़ियां बज रही थी, कंकर बज रहे। उधर अमेरिका में फैशन है कि स्त्री चूड़ी पहनती ही नहीं, एकदम गायब। मुझे पता नहीं क्या इस देश का रिवाज है, कोई नहीं पहनती। स्त्रियों को कंकर पहनना चाहिए हाथ में, कंगना कहते हैं। तो माँ यशोदा कई चूड़ियां पहनी थी, सोने की चूड़ियां, कंगन, ये खींच रही थी तो वही झनझन 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 बज रहे थे और कुंडल हिल रहे थे कानों के कुंडल और हाथ के कंकर चल रहे थे और आवाज कर रहे थे, झूम रहे थे। और माँ को अपने देह का स्मरण नहीं था, यशोदा को अपने देह की स्मृति बिल्कुल नहीं थी, भगवान की सेवा में तन्मय है। स्विंगम वक्त्रम और मुख पर पसीने की बूंदे आ गई थी, कभी दही नहीं मथी थी, कभी परिश्रम नहीं की थी। सुकुमारी यशोदा दही मत रही है, इसलिए परिश्रम के कारण मुख पर पसीने की बूंदे आ गए। परिश्रम जल, जब मनुष्य परिश्रम करता है तो उसके शरीर पर, विशेषकर मुख पर जल आ जाता है, उसको परिश्रम का जल कहते हैं या पसीना कहते हैं। कबर विगलन मालती निर्ममंत, और यहाँ तक कि जो कबर में केश पास में केश बंधन में मालती के पुष्पों की माला लगाई गई थी, वे तो पुष्प भी गिर रहे थे पीछे। वो दही मथने में तत्पर थी और ध्यान नहीं था, पुष्प भी नीचे गिर रहे थे। कबर विगलत मालती निर्ममंत, इस तरह से दही मथ रही थी। तो बाणी लगी थी कृष्ण के गुण वर्णन में और मन लगा था चिंतन में और हाथ देह लगा था सेवा में। ये है परफेक्ट भक्त की स्थिति कि भगवान की सेवा में इस तरह चित्त तन्मय, मन लीला के स्मरण में और वचन उनके लीला के गान में और शरीर सेवा में, इस तरह से एकतान होकर सेवा कर रही। इस पर कई आचार्यों ने अपनी अपनी भावनाएं दी है कि माँ यशोदा के स्तन से दूध क्यों चू रहा था। जब जैसे मैं भाव कहा कि दूध यही सोच रहा था कि कृष्ण हमको नहीं पिएंगे, माखन खाकर संतुष्ट हो जाएंगे तो मैं बेकार हो जाऊंगा, इसलिए वो चू रहा था। हाथ के कंगन बज रहे थे, झनझन 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 बज रहे थे। तो इस पर आचार्य टीका करते हैं कि माँ यशोदा के हाथ की जो चूड़ियां है वही चिन्मय है, जीव है, जड़ नहीं। तो वे आवाज कर रहे हैं, वो आवाज इस तरह मानो कर रहे हैं कि हम धन्य हैं आज उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। वास्तव में हाथ की शोभा केवल गहना लगाने से नहीं होती है। कुछ लोग समझते हैं अपने शरीर में बहुत गहना लगा लेंगे, आभूषण लगा लेंगे तो हम सुंदर लगेंगे। हाथ की शोभा भगवान की सेवा से होती है। जब तक हाथ में कर्म करने की शक्ति है तब तक भगवान की सेवा करनी चाहिए, कान से सुनना चाहिए। तो कानों के कुंडल झूल रहे हैं तो वे भी अपने को धन्य कह रहे हैं, आज हम उन कानों में हैं जो कान जो श्रवण कृष्ण लीला का श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण लीला सुन रहे हैं, सर्व बधाई दे रहे हैं। और माता यशोदा के केश पासों की मालती की माला नीचे गिर रही है, फूल नीचे गिर रहे हैं। तो इस पर आचार्य लोग एक भाव लिखे हैं कि वे फूल ये सोच रहे थे कि ऐसी महिमामयी माँ के सिर पर रहने लायक हम नहीं है, इसीलिए वे फूल आकर चरणों में गिर रहे थे, इसके चरण में रहने लायक यशोदा के सिर पर रहने लायक हम नहीं। ये फूलों के मन में विचार आ रहा था, इस तरह वो दही मत रही थी। यही है कृष्ण प्रेमी का जीवन। कृष्ण भक्त का मतलब नहीं होता है कि वो बैठ करके ध्यान किया करे, केवल भगवान की सेवा करनी है। माँ जसोदा की तरह कुछ शरीर में परिश्रम आ जाए, पसीना आ जाए, इसको कहते हैं भक्ति। आचार्य ने भक्ति की परिभाषा की है तो उन्होंने कहा है कि इंद्रियों से इंद्रिय की सेवा करना है भक्ति। हम लोग जो भी इंद्रियां मिली हैं वो भगवान ने दिया है और हम इंद्रियों का कुछ प्रयोग करना चाहते थे इसीलिए भगवान ने दिया। जीव से कुछ बोलना चाहते हैं तो भगवान बोलने की शक्ति दिए, कुछ करना चाहते हैं तो करने की शक्ति दिए, परंतु भगवान की इच्छा रहती है कि जीव मेरे विषय में बोले, मेरे विषय में सुने, मेरी सेवा करे, इसके लिए इंद्रियां देते हैं। लेकिन हम लोग तो इस बात को जानते भी नहीं है कि हमको इंद्रिय कौन दिया है, कोई पता नहीं, जानते भी नहीं। यह बहुत भारी मूर्खता है। वास्तव में हमको देह दिया गया है लेकिन हमको पता नहीं है कौन दिया है। और भगवान के बनाए हुए यंत्र में से यदि कोई खराब हो जाए तो इस संसार में अब तक बनाने की शक्ति नहीं है। और कोई भी आंख खराब हो जाए तो आंख बनाई नहीं जाती है, पत्थर की आंख लगानी पड़ती है जो देखती नहीं है। देखने में कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये भी आंख है लेकिन आंख काम नहीं करती। मनुष्य बना नहीं सकता कुछ भी, भगवान की बनाई हुई आंखें हैं, भगवान का बनाया हुआ कान है, हाथ है, तो भगवान की सेवा के लिए बनाया गया। ऐसा नहीं कि हमको भगवान ने दे दिया और हम कुछ भी खाएं, कुछ भी बोलें, कुछ भी सुने। भगवान के भक्तों द्वारा इन साधन का संकेत किया गया। तो माँ जसोदा इस तरह कृष्ण की सेवा में तत्पर हैं, लगी हैं। तो माँ जब इस प्रकार सेवा में लग गई तो भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि गृहीत्वा गतिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि। तो मंथन करने वाली अपनी जननी के पास भगवान श्री कृष्ण आए। पहले वे स्तन में काम हुए। स्तन में का अर्थ होता है स्तन का दूध। श्री कृष्ण को इच्छा हो गई माँ के दूध को पीने की, स्तन का दूध पीने की। वो रोज पीते ही थे, जगे और जगते ही भूख लग गई। बात ये थी कि माँ जब श्री कृष्ण की इस तरह सेवा कर रही थी तो भगवान भी प्रेम के भूखे हैं, वे माँ का आस्तन पीने के लिए बेचैन हो गए। तो उठे स्तन में काम हुए, ये बहुत सुंदर शब्द है। काम, काम का अर्थ होता है इच्छा। भगवान के हृदय में इच्छा हो गई माँ के स्तन का दूध पीने की। जब भक्त उनकी सेवा करता है तो भगवान भी भक्त की सेवा से ऋणी हो जाते हैं, तो ये दूध पीने की इच्छा की। तो स्तन में काम हुए और उठे और धीरे धीरे आ गए माँ के पास। माँ उनके पास नहीं गई, वो दही मथ रही थी। तो श्री कृष्ण ऊ करते हुए, आंख मलते हुए और जिधर से दही मथने की आवाज आ रही थी और माँ जसोदा के गाने की आवाज, तो स्वर वो पहचान रहे थे कि मेरी माँ गा रही है और दही मथ रही है। तो धीरे 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 उस घर में चले गए, पहुंच गए, स्वयं जगे और पलंग पर से उतरे और आंख मलते हुए गए माँ जसोदा के पास। आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम न्यस्येत। तो माँ दही मथ रही थी तो श्री कृष्ण गए और जा करके दोनों हाथ से दही मंथन का दंड पकड़ लिया। जो मटके में दंड है, मथानी देखे होंगे इसमें से कुछ लोग। ये भी बड़ा मुश्किल है इन देशों में कि ये सब भी चीज देख ही नहीं सकते, समझेंगे क्या? वो देखे ही नहीं है तो समझेंगे ना। सब चीज मशीन से मत दिया जाता है तो देखेंगे ना। हम लोग कम से कम कृष्ण लीला समझने के योग्य है क्योंकि हम सब लोग देखे हैं गांव में इन सब बात। एक दंड होता है, बंडल स्टिक और दूसरा एक दूसरी एक लकड़ी गाड़ी होती है, उसमें दो जगह पर वो रस्सी से बंधा होता है और उस दंड में ऐसे रस्सी लगाकर खींचते हैं, उसका निचले सिरे पर ऐसे अंगुली जैसा होता है और वही मथता है, घरर 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 की आवाज आती उसको मथने से। तो माँ यशोदा मथ रही थी और वही मंथन दंड की आवाज ही वो मृदंग का काम कर रहा था, उस पर वो गा रही थी। तो श्री कृष्ण जान गए कि मेरी माँ वहां मथ रही है, गा रही है, तो गए और जाकर मंथन दंड में ब्रेक लगा दी, पकड़ लिए। उनके कहने का आशय था कि तुम एक काम छोड़ो, मुझे दूध पिलाओ। वह काम भी कृष्ण के लिए किया जा रहा था, लेकिन श्री कृष्ण आए और पकड़ लिए। न्यषेधक मंथनंतिम जननी, मंथन करने वाली जननी को रोक दिए, माँ का शरीर नहीं पकड़े, मंथन दंड पकड़ ली। जब पकड़े तो माँ ने छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया। इस पर एक आचार्य में लिखा है, भगवान संकेत करते हैं कि माँ जब तुम मुझे प्राप्त कर ली हो तो क्या मंथन कर रही हो। यह मंथन शब्द का अर्थ शास्त्रों का मंथन है। कुछ आचार्य लोग ये उत्प्रेक्षा करते हैं, उपनिषद को मथना है, वेद को मथना है, रामायण महाभारत सब को मथ करके सार क्या निकाला जाएगा, कृष्ण। तो कृष्ण जिसका बेटा बने हुए हैं उसको अब क्या मथने की जरूरत है। भगवान मानो ये संकेत कर रहे हैं, तो क्या परिश्रम कर रही हो, तो रोक दिए। रोक दिए तो माँ देखने लगी कि अच्छा क्या करता है, उठाई नहीं गोद में, वही रुक गए। और श्री कृष्ण माँ के बांह को पकड़े, बांह को ऐसे झूल करके पकड़े और एक पैर गगरी पर दिए और धीरे से माँ के गोद में चढ़ गए और चढ़ करके स्वयं ही माँ के स्तनों को पीने लगे और वो सब देख रही थी कि क्या कर रहा है। और जब ही कृष्ण आए तो माँ तो काम छोड़ ही दी, लेकिन देख रही थी क्या कर रहा है। तो स्वयं जब माँ के गोद में चढ़ गए तो माँ यशोदा को बड़ी प्रसन्नता हुई, मेरा बेटा बहुत तेज है, पहले भी तो माखन उखन चुराता था कहाँ कहाँ चढ़ करके, लेकिन गोद में चढ़ गया अपने से तो उसको बहुत प्रसन्नता है। पीने लगे और वो पिलाने लगी और दूध पी पी करके मुस्कुराने लगे। पहले कुछ रो रहे थे, अब मुस्कुराने लगे दूध पी करके। आहार मिलता है बच्चे को तो पी करके हंसने लगते, मुस्कुराने लगे। उनके मुस्कुराते हुए मुख को देखती थी माँ, पिलाने लगी। अब भगवान में और माता यशोदा के दूध में होड़ लग गई, प्रेम के भूखे भगवान को तृप्ति हो नहीं रही थी और अप्राकृत जगत का यशोदा का दूध कम नहीं हो रहा था। तो दही मथना तो रुक गया और माँ यशोदा पिलाने लगे, कृष्ण पीने लगे और दूध घट नहीं रहा था और भगवान तृप्त नहीं हो रहे थे। तो बहुत देर तक वहीं पर खड़े खड़े पिला रही थी। तमं कमारूढ़ अपाय तस्तनम स्नेह स्मृतम सस्मितम इच्छति मुखम, और स्मित से युक्त मुख को माँ यशोदा देख रही थी, पिला रही थी, वो आनंद में मग्न हो गए। तब तक इसी समय क्या हुआ, चूल्हा पर रखा हुआ, अंगीठी पर रखा हुआ दूध उबलने लगा, उफान आ गया उसमें। दूध जब उबाला जाता है अति आंच के कारण तो उसमें उबाल आ जाता है, तो उबलने लगा। तो माँ यशोदा श्री कृष्ण को तुरंत उतार कर गोद से और गई कि वो दूध जल जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसको उतार दो, चूल्हे से उतार दो। इसके लिए वो चली गई। तो अप्राकृत जगत का, वैकुंठ जगत का जो दूध है वो भी चिन्मय है। तो दूध बेचारा अग्नि में जल जल कर तपस्या कर रहा था कि श्री कृष्ण के होठों का स्पर्श पा करके मैं धन्य हो जाऊंगा, श्री कृष्ण मुझे पिएंगे। लेकिन जब वह दूध देखा कि कृष्ण तो माँ यशोदा का दूध पी रहे हैं तो इनकी भूख बुझ जाएगी, तो हमको ये नहीं पिएंगे, तो मैं तो व्यर्थ ही जल जल कर मर रहा हूँ, तप कर रहा हूँ, हमारा क्या यूज होगा। तो वो सोचा कि माँ के सामने ही आत्महत्या कर लूं, वो दूध सोचा कि आग में कूद करके मर जाए। ये कोई जड़ जगत का दूध नहीं है कि उसमें कोई विचार नहीं। वो दूध इस प्रकार से विचार किया कि मैं अग्नि में जल जल कर तप कर रहा हूँ तो मैं किस काम में आऊंगा, ये केवल अपने माँ का दूध पियेंगे तो मैं मर रहा हूँ इस अग्नि पर, क्या होगा मेरा। तो माँ के हृदय में दया उत्पन्न कराने के लिए, आत्महत्या के लिए चल दिया, उफान आ गया। माँ देख ली, माँ की दृष्टि पड़ गई, तो माँ ने सोचा कि अपने छाती का दूध तो अपने पास ही है, ये तो खराब होने वाला नहीं है। ये कृष्ण के लिए पद्मगंधा गाय का दूध होटा जा रहा था तो उसको तो बचा लो, कुछ देर के बाद कृष्ण उसको पिएगा। तो माँ कृष्ण को छोड़ दी, कृष्ण पी रहे थे, छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन छुड़ा करके जमीन पर रख करके और दौड़ी दौड़ी वो गई, तो जब ही वो जा रही थी तभी दूध शर्म के मारे नीचे बैठ गया, उसका उफान बंद हो गया। दूध ने बाद में सोचा कि अरे मैं माँ के प्रेम सेवा में बाधा दिया है, कितना सुखी थी लेकिन मैं उसकी सेवा छुड़ा दिया है, तो वो शर्म से नीचे आ गया। और माँ ने देखा कि दूध औंटा जा चुका है तो चूल्हे से उतार करके नीचे रख दी। क्या प्राकृत दुर्घ नंद बाबा के यहाँ क्या प्राकृत जगत का दूध। नंद बाबा के यहाँ 100 गौएं ऐसी रखी गई थी जो सुगंधित घासों को केवल खाती थी, सुगंधित घास, और उनके शरीर उनके दूध को 10 गौओं को पिलाया जाता था। वे छाटी हुई गौएं थी, बहुत सुंदर, पद्मगंधा गाय कहा जाता था। तो पद्मगंधा गाय का दूध औंटा जा रहा था श्री कृष्ण के पीने के लिए। जब दूसरे के घर का वो दूध भी पी जाते थे, दही खा जाते थे, मक्खन खा जाते थे, तो दूध भी स्पेशल औंटा जा रहा था। जब अपने घर में ऐसा अच्छा दूध दिया जाए कि दूसरे के घर में चोरी न करे, तो माँ यशोदा उस दूध को उतारी और इधर कृष्ण को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया कि ये क्यों मुझे बिना तृप्त किए और चल दी, मेरा कोई ध्यान नहीं रहा, मैं अपना धाम छोड़कर इसके गोद में आया हूँ, ये मेरी माँ है और मेरे तृप्ति का ध्यान नहीं रखती है, बताओ थोड़े से दूध की रक्षा के लिए हमारा तिरस्कार करके चल दी। तो श्री कृष्ण में क्रोध आ गया, संजात दोष, संजात कोप स्फुरिता धर्म संदस दधिर दधिमंत भाजन भीत्वा, क्रोध उत्पन्न हो गया। पहले आप देखिए कृष्ण के लिए कहा गया काम उत्पन्न हो गया, स्तन्य काम, भगवान प्रेम के भूखे हैं, उनमें कोई कामना नहीं है, लेकिन भक्तों के प्रेम को भोगने के लिए उनमें दिव्य काम उत्पन्न होता है, माँ के स्तनों के दूध की कामना है। और कामना जब विफल हुई, पूर्ण दूध पीने को नहीं मिला, तो क्रोध हो गया, यह दिव्य क्रोध है, हम लोगों जैसे क्रोध नहीं है। संजात कोप स्फुरिता रुणाधरम संदस तद्भिर तद्मंथ भाजन भीत्वा, इतना क्रोध उत्पन्न हुआ कि छोटा छोटा होठ अधर कांपने लगा क्रोध से, क्रोध से होठ कांपने लगा और इसके बाद अपने छोटे छोटे दांतों से अपने होठों को दबाए, क्रोध में आदमी अपने दांतों से अपना अधर दबाता, तो अधर दबा लिया, स्फुरित अधर, होठ कांप रहे थे क्रोध के मारे, वाह रे वाह, मेरा ध्यान नहीं रखती है, मेरी तृप्ति अतृप्ति का विचार किए बिना हमको भूमि पर रख कर और चल दी दूध बचाने के लिए, तो मैं इस घर को बर्बाद कर दूंगा, इस घर में कुछ भी नहीं रहने दूंगा। बच्चे भी कभी कभी इस तरह क्रोध करते हैं, तो दांतों से ओठों को दबाए, लाल लाल ओठ थे स्फुरित अरुण अधरम, अरुण अधर को दब दी, दांतों से दबाए और वहीं पर धीरे से देखे, देखने लगे कि कोई पत्थर है कि नहीं, तो मसाला पीसने वाला एक पत्थर था। देखिए माँ उधर गई है, बहुत जल्दी में उठाए और बारीकी से नीचे मार दिए, उसमें कि आवाज न आने पावे, माँ न सुने, बड़ी कुशलता पूर्वक आर्ट के साथ मारे और वो फूट गया। जो दही मथा जा रहा था वो फोड़ दिए। जो दही इनके लिए मथा जा रहा है, कृष्ण के लिए मथा जा रहा है, फोड़ दिए भित्तवा। और झूठ मूठ के मिथ्या आंसू आंख में भर करके और गए और बासी माखन खाने लगे दूसरे जगह। इनके कहने का आशय था कि तुम मेरे मुझ पर ध्यान नहीं दे रही हो, मुझे नहीं पिला रही हो दूध, तो मैं घर के सामान को बर्बाद कर दूंगा और बासी भोजन करूंगा, बीमार पड़ूंगा, तब तुम मथुरा अस्पताल में हॉस्पिटल में ले जाओगी, तुम्हारा धन लगेगा, तब तुमको पता लगेगा। अब मैं बीमार होऊंगा, मानो इस तरह से दिखा रहे। दूसरे घर में जाकर के हायंगवम मतलब माखन खाने लगे, ताजा माखन इसके लिए निकाला जा रहा था कृष्ण के लिए, और इसको बर्बाद कर दिए, तो फोड़ दिए, सारा दही बह गया, नीचे बह गया। और वो गए दूसरे घर में, गए तो भगवान श्री कृष्ण उस दही पर ही जल करके गए, तो उनके पैरों के छोटे छोटे छाप पड़ गए, चरण चिन्ह पड़ गए दही से जुड़। उनको ये बुद्धि नहीं थी कि हम दही जहां नहीं है वहां से भागे, दही पर से ही भागे, और चरण चिन्ह बता रहे थे कि ये महाशय किस घर में गए, और वहां जा करके उखल को उतार उल्टा करके, उखल को उल्टा करके उस पर चढ़ करके और माखन खा रहे थे, झूठ मूठ खा रहे थे, खा नहीं रहे थे, वास्तव दिखा रहे थे कि मुझको बहुत भूख है, मैं मर गया भूख के कारण, और मुझे दूध नहीं पिला रही, ये अपना दूध बचाने दौड़ रही है, तो बचाओ दूध बचाओ, मैं इधर ये सब समाप्त कर रहा है, और घर में जो जमा है माखन उसे भी नहीं रहने दूंगा, जो मथा जा रहा था वो तो बर्बाद कर ही दिया, और जो रखा हुआ था माखन सीके पर उसको बंदरों को बांट रहे थे, पता नहीं बंदर भी कहां से उतना जुट गए, सबको बांट रहे थे माखन, घर में कुछ भी नहीं रहने देंगे, इस तरह से नटखटपना दिखा रहे। तो माँ जसोदा जब दूध को उतार करके आई तो देखी कि ये दही का मटका फूटा हुआ है, तो माँ को यह समझते देर नहीं लगी कि किसका काम है, अगर कृष्ण वहां रहता तो जान जाते कि ये नहीं किया है, तो किसी कारण से कुछ चीज गिर गया होगा या जैसे पैसे फूट गया होगा ऐसा अनुमान कर, लेकिन कृष्ण वहां नहीं था तो समझ गए कि अपराधी फरार हो गया है, ये भागा है यहाँ से, वो समझ गए, और दही के ऊपर से होकर भागे थे, छोटे छोटे चरण के चिन्ह बने हुए थे, वो समझ गए। तो माँ जसोदा को दही का मटका फूटने से कोई दुख नहीं हुआ, वो हंसने लगी और कृष्ण की चतुराई पर और प्रसन्न थी, कितना चतुर है, कितना बुद्धिमान है, ऐसे फोड़ा की आवाज भी नहीं आई और ये बर्बाद भी हो गए, बड़ा कुशल है मेरा लड़का, मेरा बच्चा बड़ा कुशल है, बड़ी चतुराई से फोड़ा है। लेकिन अब माँ भी उसी के अनुसार अब सोची कि आज इसको दंड देना चाहिए, दंड देना चाहिए, नहीं तो इसका मन बिगड़ जाएगा और ये बहुत बर्बाद करेगा घर के धन को, आज मटका फोड़ा, कल कुछ फोड़ेगा, कल कुछ करेगा। तो इसके बाद वे चली, चरण चिन्ह के सहारे चली और एक जगह से छिप करके देखने लगी कृष्ण। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उलू खलांगरे उपरी व्यवस्थितम मरका एकामम ददतम सिचिस्मितम सिचिस्थितम। माँ जसोदा ने देखा छिप करके कि उखल को उल्टे कर लिया है और उसके ऊपर चढ़ गया है और छीके पर शिखर पर रखे हुए माखन को बंदरों को दे रहा है, और कितना कामम जथेष्टम, जितना जो भी बानर खा सकता था उतना दे रहा है, उतना दे रहा, और वो भी सब खा रहे थे जुट जुट करके बानर। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान अपने श्री राम अवतार में बानरों को फ्री लड़ाए थे लंका में, कोई वेतन नहीं दिए थे। तो वही सब वेतन यहाँ पर चुका रहे हैं। बानर झूठे हैं और उनकी सेवा कारण उनको दे रहे हैं। जो भी हो इस तरह लीला चिंतन होता है, लेकिन वास्तव में भगवान श्री राम बानरों को वेतन दे रहे थे, सभी को दिए थे। सबतर फरे राम हित लागे, ऋतु और कुरित काल गति त्यागे। भगवान राम की इच्छा से वन के जितने वृक्ष थे सब फल रहे थे, ऋतु और कुरितु का नियम त्याग दिए थे। और बानर सब खा रहे थे, फर्स्ट क्लास का फलाहार कर रहे थे। बानर फल खाते ही हैं, तो भोजन तो मिला ही। और लंका में जब रावण मारा गया तो विभीषण जी ने सारा खजाना बानरों को दे दिया। ये वर्णन है, ऊपर आकाश से जा करके वस्त्र और आभूषण की वर्षा किए, और जितना आभूषण जो भी बानर ले सकता था लिया। दो तीन महीने केवल वो लोग थे सेना में, लेकिन कई वर्षों का वेतन जो होना चाहिए भगवान ने दे दिया। भगवान ऐसे नहीं कि किसी से काम करा करके और कुछ न दे। भगवान ने पूरा पूरा रत्न खजाना सब कुछ दे दिया, ले जाओ अपने घर। अयोध्या कुछ भी नहीं लेगा, लंका से अयोध्या के लिए पैसा भी नहीं ले गए, केवल विमान ले गए और बाद में लौटा दिए। कुबेर जी के पास भेज दिया गया विमान, वो रावण चुरा करके लाया था, जबरदस्ती हर करके लाया था। तो भगवान अपने भक्तों को देते हैं, खूब देते हैं। लेकिन इस अवतार में भी कुछ बानरों को बुला लिए कि तुम लोग खाओ हमारे हाथ से, खूब लुटा रहे। एक कामम शब्द का प्रयोग है, काम का होता है यथेष्ट, जितना खा सकते थे उतना। तो माँ यशोदा जब देखी ये बानरों को माखन बांट रहा है, और चोर विषम प्रतीक्षण, चोर की तरह भयभीत आंखों से देख रहे थे इधर उधर, ऐसे माखन बांट रहे थे और देख रहे थे भयभीत आंखों से। वो तो जानते थे कि वो तो आएगी ही, दूध उतार करके आएगी, देखेगी दही का मटका फूटा हुआ है तो मारेगी। तो छीट रहे थे क्रोध में होकर के और देख रहे थे भयभीत नेत्रों से। तब तक उन्होंने देखा कि माँ हाथ में छड़ी लेकर के आ रही है। तामात यष्टिम प्रसमिक्ष सत्वरस ततो वरुहिया पश्चार भीतवत। उन्होंने देखा कि माँ हाथ में छड़ी लेकर आ रही है, तब तो भीतवत बहुत भयभीत की तरह उस उखल पर से उतर करके चले भाग चले। वो सोचते थे कि माँ का शरीर भारी है, मुझे पकड़ नहीं पाएगी और मैं भाग जाऊंगा, मैं बच जाऊंगा। कई अपराध किए थे, पहला अपराध तो दही का मटका फोड़ना ही अपराध है, दूसरा अपराध बानरों को माखन बांटना है। आदमी अपने घर में माखन दही दूध रखता है तो सोचता है बिल्ली न खाने पाए, बानर न खाने पाए, रक्षा कर, और अपने घर का ऐसा बदमाश लड़का निकला कि वो सारा धन बांट रहा है बानरों को, ये भी एक अपराध था। तो कृष्ण मान रहे थे कि मैं अपराधी हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, और आज माँ मारेगी और उस पर भी हाथ में छड़ी लेकर आ गई, तो प्रकट विश्वास हो गया कि अब तो बिना पीटे छोड़ेगी नहीं। तो भागे, जब वे भागे तो माँ यशोदा चुपचाप नहीं रह गई, वो भी चली पकड़ने के लिए, कहाँ भागोगे। ऐसी प्रथम लीला हुई थी, कृष्ण भागे और माँ पकड़ने के लिए दौड़े। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि योगियों का मन तपस्या से तेज होकर के भी जिनको नहीं पकड़ पाता है, मतलब योगियों का शुद्ध चित्त भी भगवान का स्मरण तक नहीं कर पाता है, उन्हीं भगवान को डायरेक्ट पकड़ने के लिए यशोदा दौड़ने लगे। और कृष्ण तो पहले अपने घर में भागे, इस घर में उस घर में इस घर में उस घर में भाग रहे थे, इसके बाद अपने घर से निकलकर गली में चल दिए, सड़क पर भागे तो माँ यशोदा उधर भी दौड़ रही थी, हाथ में छड़ी लिए दिए, कहाँ जाएगा। सब लोग तमाशा देख रहे थे, क्या हो गया, क्या कर दिया, क्यों पकड़ रही है। माँ यशोदा मान नहीं रही थी, बच्चा तो बहुत फुर्तीला था और भाग रहा था, माँ का शरीर भारी था, पसीने से लथपथ हो गई पकड़ने में दौड़ने में। तो गांव में इधर उधर दूसरे के घर में भी भाग रहे थे, माँ पीछे से चल रही थी, अंत में जाते जाते पकड़ लिया। और जब पकड़ लिया तो एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ कृष्ण का अपने नेत्रों को पोंछ रहा था, दाहिने हाथ को बकरा माने, अरे बानर बंधु, अरे मंथनी स्फोटक, वो कहने लगे बानर ही तुम्हारे संबंधी है, बानरों को इतना धन बांट रहा है, अरे बानर बंधु, अरे नटखट, आज मैं तुमको दंड देती हूँ, तुम्हारी सारी आदत निकाल दूंगी। इतना दिन से सुन रहे थे कि तुम दूसरे के घर में चोरी कर रहे थे और आज अपने घर के सामान बर्बाद करने लगे। माँ ऐसे डांट रही थी, आज मैं तुमको बांधूंगी, मारूंगी, छड़ी उठाकर ऐसे कह रहे थे। बोल क्यों क्यों मटका फोड़ा, क्यों फोड़ा? अब श्री कृष्ण रोने लगे, बिल्कुल फफक फफक कर रोने लगे और अपने बाएं हाथ से आंखें मलने लगे। तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और आंसुओं से काजल भींग रहा था, तो भींगा हुआ काजल उनके गाल पर इधर उधर सब फैल गया। तो इससे श्री कृष्ण की शोभा और बढ़ गई, सुंदर शरीर पर काजल फैल रहा था, बार बार रो रहे थे और कह रहे थे अब ऐसी गलती नहीं करूंगा, अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा, माँ छोड़ दे, अब ऐसा अपराध नहीं करूंगा। रो रहे थे, खूब रो रहे थे। माँ ने देखा कि बहुत ज्यादा डर गया है तो छड़ी रख दी। जब छड़ी रख दी तब कृष्ण नॉर्मल कंडीशन में आए, अब विश्वास हुआ कि अब नहीं मारेगी, मारेगी तो एक तमाचा मारेगी, अब छड़ी से नहीं मारेगी। तो कुछ कुछ स्वस्थ हुए। इस प्रकार अपने संपूर्ण अवतारों में, संपूर्ण लीलाओं में भगवान अपराधी के रूप में प्रथम बार खड़े हैं। ऐसी मधुर लीला भगवान की अन्यत्र नहीं है। अपराधी बनकर भगवान माँ के पास खड़े हैं और माँ के हाथ में है कि उनको मारे या छोड़े या बांट दे। ये है वत्सल्य भाव ब्रज का। कृतागसम तम प्ररुदंत मक्षणी कसंत मज्जन मछली सोपारिना उद्विक्ष मानम भय भी विलक्षण हस्ते ग्रीवाग्रत। हाथ पकड़ कर माँ बार बार भर्सना कर रही थी, डांट डपट रही थी, प्ररुदंत में बार बार रो रहे थे, आंखों का काजल उनके मुख पर फैल रहा था। तो माँ ने देखा कि बहुत भयभीत हो गया है तो छड़ी फेंक दी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अर्भक वत्सला, कुछ भी हो जसोदा अपने पुत्र के प्रति बहुत वत्सला है। उसने देखा कि बहुत भयभीत हो गया है तो छड़ी फेंक दी, लेकिन छड़ी फेंकने के बाद भी मारी तो नहीं, पीटी नहीं अपने बच्चे को, लेकिन बांधने का प्रयास करने लगी, बांधने लगी। और उस तरह का दही केवल एक ही मटके में नहीं था, और भी कई मटकों में दही था। तो माँ यशोदा ने सोचा कि इस समय ये भयभीत हो गया है, अगर ऐसे छोड़ दूंगी तो ये कहीं भाग जाएगा जमुना के तट पर इधर उधर बिना खाए पिए, तो इसको बांध करके रख लूं, इसके बाद जो दही मथना है दूसरे मटके का उसको मथ लूं, इसके लिए माखन निकाल लूं, इसके बाद मना लूंगी। इसके लिए वो बांधना चाहती। कभी कभी कृष्ण भाग जाते थे इधर उधर तो घंटों चौहना पड़ता था, और आज तो मारने के लिए दौड़ी थी, हैरान की थी, इसलिए माँ को डर हो गया कि आज भाग जाएगा घर से, बहुत तंग करेगा, इसलिए इसको बांध कर रख लेना चाहिए। बांध करके रख लूंगी, इसके बाद दही मथ लूंगी, सब भोजन तैयार हो जाएगा तो खिला दूंगी लाला को, तो खिला दूंगी, संतुष्ट करूंगी, फिर दूध पिलाऊंगी। तो बांधना चालू की, ये सकलतम वधम दामना अतद वीर्ज को विदा, अतद वीर्ज को विदा। श्री कृष्ण के प्रभाव को, ईश्वरताई को, ऐश्वर्य को माँ यशोदा नहीं जानती थी, वो ये नहीं जानती थी कि ये भगवान, तो उनको बांधने चली। यहाँ पर वीर्ज शब्द दिया गया, संस्कृत में वीर्ज शब्द का बहुत सुंदर अर्थ होता है। वीर्ज का अर्थ होता है किसी वस्तु का प्रभाव, जैसे जहर है विष, विष का वीर्ज है मार देना, जान से खत्म कर देना, इसको विष का वीर्ज कहते हैं, प्रभाव। या अमृत का वीर्ज है अमर कर देना। तो भगवान के कुछ प्रभाव है, उनका अपना कुछ विशिष्ट प्रभाव होता है, तो उस प्रभाव को माँ यशोदा नहीं जानती थी, वो नहीं जानती थी कि ईश्वर है ये, इनका न आदि है, न अंत है, न बाहर है, न भीतर है, इनको बांधना असंभव है, बांधा नहीं जा सकता। लेकिन माँ यशोदा तो जानती थी कि बच्चा है, हमारा बच्चा है, इसको बांध करके रखूंगी, तो बांधने का प्रयास करने लगी। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ एक सिद्धांत बोल रहे हैं, न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम न पिछा परम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगत यह तम मत्वात्मजम अव्यक्तम मर्तलिंग मधोक्षजम गोपिको लुखले दामना बबंध प्राकृतम जथा। भगवान में अंत नहीं है, भीतर नहीं, न बहि न बाहर, ये भगवान का वर्णन है। हम लोग इस संसार में कोई भी वस्तु अपने अनुभव में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसका अंत उसका भीतर है या बाहरी जरूर है। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे शरीर के बाहर भी बहुत कुछ है ना, बाहर ही ज्यादा है, हमारे बाहर हवा है, ये हाल है, तो पूरा न्यूयॉर्क नगर है, पूरा जगत हमारे बाहर है, और भीतर भी कुछ है, भीतर भी कुछ है, लेकिन भगवान के भीतर कुछ नहीं है, उनमें भीतर ये शब्द प्रयोग ही नहीं कर सकते और बाहर भी प्रयोग नहीं कर सकते, तो कहां से कहां बंधन लगाएंगे। बंधन कहीं से चालू किया जाता है, जैसे माइक का दंड है, आदमी यहां से बंधन चालू करे तो यहां आकर के बांध देगा, लेकिन जिसका कोई और छोर नहीं हो, जिसका अंत नहीं है, जिसका बाहर भीतर कुछ नहीं है, जो सब तरह से पूर्ण है, कैसे बंधन करेंगे, कहां से बंधन लगाएंगे। यह जगत जो हम देख रहे हैं, देखने में लगता है कि कृष्ण के बाहर है, लेकिन सारा जगत कृष्ण के भीतर है और भीतर उनके कुछ नहीं है, ये भी कहा गया। गीता में भगवान कहते हैं कि मेरे भीतर सारा जगत है और जगत के भीतर मैं हूँ, फिर वे कहते हैं मेरे भीतर कुछ भी नहीं है और मैं किसी के भीतर नहीं। कहां से बंधन लगाएंगे। भगवान जब संधि दूत बनकर गए हस्तिनापुर में तो दुर्योधन उनको बांधना चाहता था, पहले वो रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे संधि हैं, भोजन कीजिए, इसके बाद बातचीत होगी। भगवान ने साफ कह दिया मैं संधि बनकर नहीं आया हूँ, मैं महाराज युधिष्ठिर का दूत बनकर आया, मेरा प्रपोजल है, मेरा रिक्वेस्ट है, उसे स्वीकार कीजिए, तब मैं भोजन करूंगा। तो दुर्योधन कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप अपने को युधिष्ठिर का दूत कहते हैं, आप इतने महान पुरुष हैं। तो बातों में भगवान ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खाऊंगा जब तक मेरा काम नहीं हो। तो दुर्योधन ने सोचा कि श्री कृष्ण को यहीं पर बांध कर रखना चाहिए, जेल में डाल देना चाहिए और पांडवों से युद्ध किया जाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के साथ रहेंगे तो इनकी बुद्धि से वे जीत सकते। तो बांधने के लिए चला, भगवान भीषण हुंकार किए और विश्व रूप दिखाए, फिर कहे कि देखो कहां तुम्हारे पास इतनी लंबी रस्सी है, कैसे बांधोगे, कहां से चालू करोगे और कैसे बांधोगे। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, जो मुझे बांधने आए हो जंजीर बड़ी क्या लाए हो। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है हिंदी में, तो मुझे बांधने आए हो लेकिन कौन बड़ी जंजीर लाए हो, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, गत और अनागत काल देख। देखो दुर्योधन, मेरे मुट्ठी में तीनों काल है, मेरे पैर के नीचे पाताल है, और गत और अनागत काल, भूत और भविष्य सब मेरे भीतर है, बांधो कहां से बांधो। वो तो सब बेहोश होकर गिर गए, भगवान कृष्ण का रूप देखते ही सब गिर गए। लेकिन दुर्योधन आदि कृष्ण को नहीं बांध सके, पर माँ यशोदा ने बांध दिया। क्या मानकर, आत्मजम मत्वा, अपना पुत्र मान करके बांध दिया। तो भगवान में बाहर भीतर कुछ भी नहीं है, मतलब ये अनंत है, असीम है। तो जब माँ यशोदा बांध रही थी कृष्ण को, तो कुछ घटना घटी। घटना इस प्रकार की घटी कि जो भी रस्सी वो बांधी पहले, तो जब ही लाला के कमर में बांधी तो आते आते दो अंगुल कम हो जाती थी रस्सी, और कितनी भी लंबी रस्सी जोड़ती थी तो दो अंगुल कम हो जाती थी। तो जसोदा को आश्चर्य होता था क्या हो गया है, लेकिन फिर भी वो बांधने से नहीं मानी। भगवान की सारी शक्तियां एक मत होकर इसका विरोध कर रही थी कि हम भगवान को नहीं बांधने देंगे। उनकी विभूता शक्ति, सर्वव्यापकता शक्तियां सब उदित हो रही, दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। सबसे पहले मां यशोदा अपने केस के जूड़ा से एक रस्सी निकाली लंबी और उससे बांधना चाहती थी, तो घट गई तो घर के एवं स्वगेह तामानी अपने घर की रस्सियों को मंगाने लगी, और जे ही गांठ लगा करके बांधने चलती थी कमर तो दो अंगुल कम हो जाता था, हमेशा दो अंगुल कम। आचार्यों ने इस पर बहुत सा भाव लिखा है कि दो अंगुल रस्सी कम क्यों पड़ रही थी। कई लोगों ने भिन्न भिन्न आशय दिया है। एक आचार्य कहते हैं कि आगे चल करके नल कुबर और मणिगिरी इन दोनों का उद्धार करना था, तो इसको सूचित करने के लिए दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी। एक आचार्य कहते हैं कि भगवान मां यशोदा का परिश्रम अभी कम हुआ था, इसीलिए भगवान की दया में कमी हो रही थी। तो भक्त के परिश्रम में कमी थी और भगवान की दया में कमी थी, इसलिए नहीं बंध रहे थे। जब परिश्रम पूरा हो जाएगा तो दया भी पूरी हो जाएगी, तब बंध जाएंगे। भगवान प्रतीक्षा करते हैं कि हमको बांधने वाला पूरा पूरा परिश्रम करे। शुरू में ही निराकार कह करके छोड़ देगा तो भगवान उसके लिए निराकार ही रहेंगे, वे क्यों साकार बनेंगे। शुरू में ही कुछ लोगों की आइडिया है कि भगवान निराकार है, ये फालतू आइडिया है, वास्तव ये अज्ञान है। लोगों को यह ज्ञान है कि भगवान क्या नहीं है, लेकिन यह ज्ञान नहीं है कि भगवान क्या है। प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि इन दिस एज पीपुल नो व्हाट इज नॉट गॉड, भगवान क्या नहीं है इसको लोग जानते हैं, लेकिन भगवान क्या है इसको नहीं जानते। जितना नकारात्मक वर्णन करना होता है करते रहते हैं, भगवान ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन भगवान क्या है इसका वर्णन नहीं करते, और इसी को फिलॉसफी मान लिया जाता है। जैसे कोई पूछे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, तो कोई आदमी प्रवचन करने लगे वो सिंह नहीं है, वो भेड़ा नहीं है, वो गाय नहीं है, वो ये नहीं है, वो ये नहीं है, अभी कौन सा वर्णन है, तो क्या है ये तो वर्णन करो, ये तो वर्णन करना चाहिए। तो आज तक ईश्वर का वर्णन यही लोग करते हैं कि ईश्वर क्या नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई घर नहीं है, बस ये तो कोई ज्ञान है नहीं, निगेशन केवल करते हैं। तो भगवान है के लिए जो परिश्रम किया जाता है उनको भक्तवत्सल मान करके तो भगवान प्राप्त होते हैं, भगवान अपनी लीला द्वारा ये सब दिखा रहे। तो मां यशोदा के परिश्रम में अभी कमी हो रही थी, इसलिए एक रस्सी घट रही थी, और भगवान की दया उधर उत्पन्न नहीं हो रही थी और दो अंगुल कम हो रहे थे। भगवान ने बताया कि जिसके शुरू में बंधन नहीं है और अंत में बंधन नहीं है, उसके बीच में भी बंधन नहीं हो सकता है। और मां यशोदा बीच में बांध रही थी, कमर में बांध रही थी। भगवान कई बातों को ये सिद्ध कर रहे थे। जो भी हो, जब रस्सी उठाती थी तो रस्सी कम पड़ जाती थी, तो अपने घर के सभी रस्सियों को जोड़ दी, फिर भी रस्सी कम पड़ रही थी। अंत में दूसरे के घर से रस्सी मांगने लगी, तो गोपियां जुट गई वहां पर, एकत्रित हो गई और कहने लगी कि क्या हो गया है रानी जी, आपके पुत्र के भाग्य में बंधन नहीं लिखा गया है तो छोड़ दीजिए, क्यों हट कर रही। तो भगवान की सर्वव्यापकता शक्ति कह रही थी मैं बंधने नहीं दूंगी, ईश्वर किसी के बंधन में नहीं आ सकता है। लेकिन मां यशोदा पसीने से लथपथ हो गई, पसीना पर पसीना छूट रहा था और वो जिद में आ गई कि बांध करके रहूंगी। ऐसा होता है मनुष्य के मन में भाव, कोई काम करने चलता है और दूसरे लोग कहते हैं छोड़ दीजिए अब नहीं होगा, तो आदमी वो हट में आ जाता है, हट कर लेता है। माँ यशोदा ने कहा बांध करके ही रहूंगी, चाहे आज शाम हो जाए या पूरे गोकुल की रस्सी जुटानी पड़े, फिर भी बांध करके ही रहूंगी। और जो भी लंबी से लंबी रस्सी बांधती थी वो घट जाती थी। जो गोपियां हंस रही थी और माँ यशोदा भी हंस रही थी, पता नहीं क्या हो गया लेकिन बांध करके रहूंगी। अंत में भगवान ने जब देखा स्वमातु श्रीन गात्राया, मेरी माँ का शरीर पसीना से तरबतर हो गया है और उसके केश के माक के फूल गिर गए हैं, तो दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया सित्व बंधन, माँ का परिश्रम देख करके बंध गए। भक्त में और भगवान में होड़ लगी थी, हट हो रहा, भगवान कह रहे थे नहीं बंद होगा और भक्त हट किया है बांध करके ही रहूंगा। अंदर भगवान हार गए, उनको बंधना पड़ा। जब माँ ने बंधन लगा दिया कमर में तो वो सोची कि कहाँ बांधना चाहिए, तो वो उखल में ले जाकर के बांध, उखल भारी है, पत्थर का उखल है, इसको इधर उधर घसीट नहीं सकता है। और एक आचार्य कहते हैं कि उखल चोरी में सहायता किया था इसलिए वो भी चोर है, तो माँ ने सोचा कि इस चोर को चोर से बांधना ठीक है, जो उखल पर चढ़ करके चोरी किए थे तो उखल को ही बांधा गया। उलूखल या उखल कहते हैं संस्कृत में, तो उखल से माँ यशोदा बांध दी। एक प्रश्न होता है क्या भगवान पराजित हो गए, तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हाँ, भगवान भक्त से हमेशा हारे हुए, जब उनकी विभुता शक्ति सर्वज्ञता शक्ति लड़ रही थी तो भगवान की कृपा शक्ति हृदय में उदित हुई और वे बंध गए। कृपया आसित तो बंधन है, भगवान कृपा से बंध गए। एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता, इस प्रकार भगवान ने यह दिखाया कि मैं भक्त के वश में हूँ, अपने भृत्य के वश में हूँ, इस लीला के द्वारा उन्होंने दिखाया। जैसे पुतना के उद्धार में भगवान ने अपना गुण दिखाया था, वैसे ही उखल में बंध कर भगवान ने यह दिखाया संसार को कि मैं अपने प्रेमियों के वश में रहता हूँ, मुझे कोई भी बांध सकता है। भगवान अपना यह गुण इस जगत में इसीलिए दिखाते हैं कि लोग उनसे प्रेम करें। भगवान को बांधा जा सकता है लेकिन यशोदा के समान प्रेम किया जाए तो। अपने अप्राकृत धाम से इस जगत में आकर भगवान हम लोगों को ये सिखाते हैं कि देखो मैं अपने भक्त के वश में हूँ। एवं समदर्शिता ही अंग हे प्रिय परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने सम्यक रूप से दिखाया क्या भृत्य वश्यता, भृत्य के वश में हूँ मैं, भगवान भक्त के वश में। स्व बसे नापि कृष्ण न जसेदम से स्वरम बसे, यह संपूर्ण विश्व कृष्ण के वश में है, कृष्ण के अधीन है लेकिन कृष्ण भक्त के अधीन है, यह भगवान ने दिखाया। ये भगवान का स्वभाव है। अब किसी से पूछा जाए आप बताओ निराकार का क्या स्वभाव है, वो किसी के वश में होता है क्या, तो किसी के वश में हो नहीं सकता, उसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ बांधा जाएगा कहाँ खोला जाएगा, किसी के वश में होना या वश में रखना, शुरू से ही कंसेप्शन बिगड़ा हुआ है भगवान के विषय में लोगों का, इसलिए भागवत सुनना चाहिए। भगवान अपने प्रेम करने वालों के वश में रहते हैं, भगवान के वश में सारा जगत है, जसेदम से स्वरम वसे, यह जगत है भगवान कृष्ण के अधीन है। और स ईश्वर का अर्थ है कि इस जगत के बहुत से मालिक हैं, जैसे स्वर्ग के स्वामी है इंद्र या भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, इनको जगत का नियामक कहते हैं। संसार में अनेक जीव हैं और उन जीवों के कुछ नायक हैं, जिनको लोकपाल कहते हैं, तो वे सब कृष्ण के दास हैं, वे सभी श्री कृष्ण के दास हैं, परंतु श्री कृष्ण अपने भक्तों के दास, अपने भक्तों के वश में रहते हैं। सारा जगत जिनके वश में रहता है वैसे वे भगवान भक्त के वश में रहते हैं। कई लीलाओं में वे व्यक्त करते हैं, भगवान इस तरह यहाँ लीला न करें तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान कैसे व्यवहार करते हैं भक्तों के साथ या असुरों के साथ, क्या व्यवहार करते हैं, भगवान कितने दयालु हैं, क्या है। जब तक वे लीला नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। इस जगत में भगवान आकर अपना स्वभाव प्रकट करते हैं, अपनी लीला प्रकट करते हैं, जिससे जीव उनके तरफ आकृष्ट हो, उनसे प्रेम करे। तो उनकी लीलाओं को श्रीमद् भागवत में कुछ लिखा गया है। हमारा ये सबसे बड़ा धर्म है कि हम भगवान के विषय में सुने, जिससे हमारा मन कृष्ण में अट्रैक्ट हो। ये भगवान आकर के लीला इसीलिए करते हैं। तो भगवान के बस में सब लोग हैं, कृष्ण के बस में सब लोग हैं। द्वारका में लीला है, एक बार भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आए। तो ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी को द्वारपालों ने रोका। ब्रह्मा जी से पूछा द्वारपालों ने, आप कौन हैं? तो ब्रह्मा, जाओ भगवान से आज्ञा मांगो, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, कृष्ण से आज्ञा मांगो। तो द्वारपाल जाकर के कहे भगवान से कि ब्रह्मा जी आए हैं आपका दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने पूछा द्वारपालों से, जाकर पूछो कि कौन ब्रह्मा कौन ब्रह्मा आया तो द्वारपालों ने आकर पूछा ब्रह्मा जी से कि भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन ब्रह्मा है, अपना परिचय दीजिए। तो ब्रह्मा जी कुछ कुपित हो गए, कहे कौन ब्रह्मा, ब्रह्मा भी 10-20 है क्या, जाकर कह दो कि सनत कुमार के बाप आए, चतुर्मुख ब्रह्मा है, जाओ कह दो भगवान से। क्या हो गया भगवान को आज, क्यों पूछ रहे हैं कि कौन ब्रह्मा है ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ। तो द्वारपाल लोग जाकर कहे कि उस सनत कुमार के पिताजी आए हैं, चार मुख वाले ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी गए, भगवान को प्रणाम किए कृष्ण। तो भगवान ने पूछा, किस तरह से सृष्टि चल रही है, सब ठीक है ना, सब कुछ पूछा। और एक तरफ खड़ा हो गए ब्रह्मा जी। तब तक 8 मुख वाले ब्रह्मा आए, तो 16 मुख वाले आए, 32 मुख वाले, 64 मुख वाले, करोड़ अरब मुख वाले ब्रह्मा सब। उसी तरह के करोड़ों रुद्र आए, इंद्र आए, चंद्र आए, सूर्य आए, और ब्रह्मा जी उन सब अन्य ब्रह्माओं के बीच में और अन्य रुद्रों के बीच में ऐसे खड़े थे जैसे हाथियों के बीच में खरगोश खड़ा होता है, सशक्त, रैबिट कहते हैं ना खरगोश को, जब हाथियों के बीच में खरगोश खड़ा हुआ ऐसे देखता। तो ब्रह्मा जी आश्चर्य से देखने लगे, रे बाप रे बाप, एक से एक बड़े ब्रह्मा है, एक से एक शिव है, रुद्र है, और भगवान श्री कृष्ण सबके ईश्वर, तो सब इनके बस में। इस प्रकार की लीला भगवान द्वारका में किया करते थे। कभी कभी वो खबर भेजते थे, बुलाते थे, इंद्र को बुलाओ। अब पूछते थे कैसे शासन हो रहा है, ठीक से स्वर्ग का शासन करते हो ना, सब काम ठीक से चलता है, भगवान इस तरह पूछे करते थे। तो कृष्ण के बस में सारा जगत है, लेकिन वे कृष्ण भक्तों के बस में। जब कुछ भक्तों की इच्छा थी कि बीच में कुछ कीर्तन किया जाए 10 मिनट, तो मैं यहाँ रोक रहा हूँ, 10 मिनट कीर्तन कर लीजिए, तो फिर 10-20 मिनट कथा होगी। हरे कृष्णा। तो भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के द्वारा बांध दिए गए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी इस लीला पर सिद्धांत व्यक्त कर रहे हैं कि एवं संदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता स्वशे नाथ कृष्ण न जस्येदम से स्वरम वशे। जिन श्री कृष्ण के वश में यह सारा विश्व है, समस्त देवता मुनि जिनके वश में हैं, उन भगवान को माँ यशोदा ने बांध दिया। तो भगवान इस लीला द्वारा यह दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूँ। इस सारे जगत के जो स्वामी हैं, वो किसी भी व्यक्ति के वश में हो सकते हैं यदि वह कृष्ण से प्रेम करे। गीता में भगवान कहते हैं कि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजामि अहम्। मुझको जो जिस भाव से भजता है, मैं उसी भाव से उसको भजता हूँ। यदि कोई श्री कृष्ण को पुत्र मानता है तो श्री कृष्ण पुत्र बनने के लिए तैयार है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। हम लोगों की तरफ से कमी है कि हम यशोदा जैसा भाव बनाते नहीं, पता नहीं कैसे कैसे बच्चों को अपना बच्चा मान लेते हैं, है ना, कोई संबंध नहीं है पहले का, काल क्रम से कोई हमारा पुत्र हो गया तो हम मानते हैं हमारा पुत्र है, लेकिन वो पुत्र फिर छीन लिया जाएगा। कृष्ण ऐसे पुत्र हैं कि वे कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी अंत नहीं होगा। भगवान चाहते हैं कि कोई हमें पुत्र भाव से प्रेम करे, प्रियतम भाव से प्रेम करे, हमारा आदर करे, लेकिन हम लोग कृष्ण को मानते ही नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है। तो भगवान इस जगत में आया करके अपने को दिखाते हैं कि देखो मैं कैसा। जब बहुत काल तक भगवान इस संसार में नहीं आते हैं तो लोगों में कंफ्यूजन छाता है कि भगवान है या नहीं है, है तो कैसा है ना, ऐसे कंफ्यूजन छा जाता है। कुछ लोग तो अपना मत प्रकाशित कर देते हैं, कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, और लोग पुस्तकें लिखते हैं, कहते हैं भगवान नहीं है इस जगत में, गीता में भगवान ने ऐसा कहा, जगत आहुर ईश्वरम, खुद ईश्वर बोल रहा है गीता में, कहता है कि असुर लोग कहते हैं कि इस जगत का कोई ईश्वर नहीं, ईश्वर अगर होगा तो वो बूढ़ा हो गया होगा। एक बार रशिया में मीटिंग किए थे कुछ लोग, कल्याण पत्रिका में निकला था, लोग मीटिंग किए थे कुछ वैज्ञानिक कि भगवान को गद्दी से उतार दिया जाए, बहुत काल तक अपने मन का किया अब दूसरे को बनाया जाए भगवान, लेकिन प्रस्ताव में ये पेश किया गया कि वो कहाँ है जिससे हम लोग हटाएंगे, तो किसी को पता नहीं। ये सही बात है, सत्य बात है। प्रपोजल रखा गया कि भगवान को गद्दी से उतारा जाए, हटाया जाए, पता ही नहीं है वो कहाँ है, उनको कोई नहीं हटाया जा सकता, उनको कोई नहीं हटा सकता। लोग जन्म लेते हैं, कीड़े की तरह मरते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं या कुछ भी बनते हैं, फिर जमीन में समा जाते। कितने आएंगे वैज्ञानिक, कितने बड़े बड़े लोग, लेकिन भगवान का सिंहासन क्यों कहते हो। तो भगवान जब नहीं आते हैं इस जगत में तो भगवान के विषय में अनेक बातें लोग करते हैं। अधिकांश लोग तो ये मान लेते हैं कि उनका कोई रूप नहीं और निराकार है, क्योंकि आ ही नहीं रहे। कुछ लोग तो कहते हैं भगवान अब नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, बहुत बातें बोलते हैं। इसीलिए भगवान आते हैं और दिखाते हैं कि देखो मैं कैसा हूँ, मैं अपने भक्तों के बस में हूँ, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति हूँ, सबसे अधिक अनंत धन वाला हूँ, अनंत सुंदर हूँ। भगवान आते हैं यहाँ, और जब अपने विग्रह को प्रकट करते हैं उस समय भी कुछ खल ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ये तो वसुदेव जी का पुत्र है, ये भगवान नहीं, हम नहीं मानते। तो भगवान जब नहीं आते हैं तो उनको निराकार कहते हैं, और जब भगवान आते हैं तो कहते हैं ये आदमी है। ये भगवान के सामने भी बड़ा फेर है कि वो क्या करे, कैसे प्रचार करे। प्रभुपाद जी कभी कभी कहा करते थे कि कोई चोर चोरी करने जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान हमको सफलता दो चोरी में, और उस घर का मालिक भगवान से विनय करके सोता है कि हे भगवान हमारे धन को बचाए रखना। तो हम भगवान बड़े फेर में पड़ जाते हैं, हम क्या करें। चोर को सफलता दे कि धनी के धन की रक्षा कर। तो भगवान के सामने एक समस्या है जगत रच करके, वास्तव में इतनी उनके लिए समस्या नहीं है, लेकिन लोगों में समस्या है कि वे कैसे कृष्ण को जानेंगे। तो भगवान बारंबार अवतार लेते हैं, अवतार लेकर के अपना स्वभाव प्रकट करते हैं, देखो मैं ऐसा हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भक्त वत्सल हूँ, मैं भक्त के बस में हूँ, तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, योगक्षेमम वहामि, मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। योग का अर्थ होता है जुटाना, जो तुम्हारे पास नहीं है वो जुटाऊंगा, लाऊंगा, और जो है उसकी रक्षा करूंगा, इसको क्षेम कहते हैं। मैं योगक्षेम वहन करूंगा, और आकर के लीला करके दिखाते हैं, जैसे अर्जुन की रक्षा करके दिखाए, रथ हांक करके दिखाए, माँ यशोदा के हाथों में बंध करके उन्होंने दिखाया, देखो मेरा ये स्वभाव है। तो भगवान अपना स्वभाव दिखाते हैं, अपना सौंदर्य दिखाते हैं, अपना बल दिखाते हैं, धन दिखाते हैं, यहाँ वो बहुत बहुत एक्सप्रीट करते दिखाते हैं। वह इन सबके पीछे भगवान का एक ही उद्देश्य है कि जीव मेरे पास आवे, वो मुझे पहचाने, मेरी शरण ले। बुलाते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, बार बार बुलाते हैं, आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ये उद्देश्य। और विशेष करके माँ यशोदा को जो सुख मिला, यह सुख किसी को नहीं मिला। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, नेमम विरिंचो न भव न श्रीरभ्यंग संश्रिता संश्रया प्रसादम ले भीरे गोपी जब तक प्राप्त विमुक्ति दात। जो प्रसाद जो सुख पाया यशोदा ने, वह सुख न तो ब्रह्मा को मिला, न शिव को मिला, न श्री को मिला। ब्रह्मा जी भगवान के अपने पुत्र हैं, खास बेटा है, खास बेटा को भी सुख नहीं मिला जो भगवान को गोद में लेकर खिलावे और अपराध करने पर तमाचा मारे कृष्ण। ब्रह्मा जी कृष्ण के पुत्र हैं, नाभि से भगवान ने उनको उत्पन्न किया, लेकिन ब्रह्मा जी की भक्ति क्या है, भगवान के प्रति की आदर भाव से है, वो प्रणाम करते हैं, कभी सोचे भी नहीं कि भगवान मेरे गोद में आएंगे। और इसी तरह भगवान शिव, वो तो कृष्ण के स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन उनको भी ये सुख नहीं मिला। कृष्ण को स्तन पिलावे, गोद में रखे, झूला झूलावे, ये सुख नहीं मिला। और न श्री, भगवान की पत्नी भारजा लक्ष्मी जी को भी ये सुख नहीं, जो सुख यशोदा को मिला। नायम सुखा को भगवान देहिनाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम छात्र भूता नाम यथा भक्ति मता में है। और फिर सिद्धांत दे रहे हैं कि भगवान भक्तों के लिए जितना सुख से प्राप्त होते हैं आसानी से, ज्ञानियों को नहीं मिलते, तपस्वियों को नहीं मिलते, फिर साधारण देहधारियों को कहां से मिलेंगे। सुखाप आप माने प्राप्त, सुख माने सुख से आसानी से कृष्ण सुख पूर्वक मिल जाते हैं भक्तों को, भक्ति से प्राप्त होते हैं। भक्त्या माम अभिजाना थी, तो माँ यशोदा ने भक्ति किया, नंद महाराज ने भक्ति किया, तो उनके गोद में भगवान पुत्र बनकर आए। यदि हमारे भीतर भी ये इच्छा होगी कि भगवान हमारा पुत्र बने और उसके लिए हम प्रयास करेंगे, तो भगवान हमारा पुत्र बन जाएंगे। और दूसरा कोई व्यक्ति पुत्र नहीं बन सकता है हमारा। आप किसी से प्रार्थना कीजिए, किसी आप मनुष्य से कहिए कि मैं चाहता हूं कि आप मेरा बेटा बनिए दूसरे जन्म में, क्या वो बन सकेगा? उसका जन्म कहाँ होगा पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। भगवान से प्रार्थना किया गया कि आप मेरा पुत्र बन जाइए, वसुदेव जी ने कहा, देवकी ने कहा, तो भगवान पुत्र बन गए। लेकिन यहाँ किसी से भी, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से अगर कहिए कि आप, मेरी इच्छा है कि आप मेरा बेटा बनिए, चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म, वो क्या करेगा, मर जाएगा, बेटा बन नहीं सकता है, क्योंकि जन्म लेना अपने हाथ में है नहीं। ये भगवान तो जिसका पुत्र बनना चाहे बन सकता है, लेकिन बनते हैं पुत्र भक्तों का, भक्तिमान और ज्ञानियों का नहीं। यहाँ तक जो आत्मभूत हो गए हैं उनको, उनका भी नहीं, उनको उनको भी कृष्ण नहीं मिलते। दो तरह के जीव यहाँ पर हैं, एक को आत्मभूत कहते हैं और दूसरे को जीव भूत कहते हैं, आत्मभूत अथवा ब्रह्मभूत। जब हम अपने स्वरूप को जान जाते हैं कि हम देह नहीं है, देह से अतीत हैं, और अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं ब्रह्मभूत। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांची। लेकिन दूसरे जीव जो है वो देह भूत या जीव भूत है, ममैवांसो जीव लोक के जीव भूत सनातन। तो जब तक हम देह के प्लेटफॉर्म पर हैं, तब तक हम लोगों को देही कहा जाता है। और जब देह से मुक्त हो जाते हैं, आत्मा को समझ लेते हैं कि अचिन्मय है, तो उसको आत्मभूत कहते हैं या ब्रह्मभूत कहते हैं। हम लोग देह नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल है, स्पिरिट है। जब उसको समझ जाते हैं तो इसको ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और जब व्यक्ति ब्रह्मभूत अवस्था पर हो जाता है, तो न सोचती न कांची, संसार में कुछ भी नुकसान हो जाए उसे सुख नहीं होता है, और कुछ भी वस्तु हो या न हो उसके लिए इच्छा नहीं होती, न सोचती न कांक्षती, न कांक्षती न सोचती, कोई इच्छा नहीं होती संसारिक वस्तुओं की, और न शोक होता है। लेकिन जो देह भूत होता है, देह को मैं मानता हूं, उसे बहुत बहुत कामना होती है। तो भगवान भक्तों को मिलते हैं। तो इस प्रकार माँ यशोदा के हाथों से उखल में बंध कर भगवान जिस जगत को ये संदेश दे रहे हैं देखो मैं अपने भक्त के वश में हूँ, तुम भी चाहो तो मुझे बांध सकते हो। कैसे हूँ छोड़े ना ही छुड़ाए, रसिया बंधो प्रेम की डोर। भगवान कहते हैं प्रेम का धागा झीना झीना है, थोड़ा है लेकिन इसमें इतनी शक्ति है कि मैं इसको तोड़ नहीं सकता हूँ। ये तोड़ा नहीं जा सकता, माँ यशोदा ने बांध दिया तो फिर भगवान की हिम्मत नहीं थी कि वे अपने से खोल ले। तुलसीदास जी ने अपने विनय पत्रिका में लिखा है कि चिन्ह बांधो सुर असुर नाग मुनि प्रबल कर्म की डोरी तेजस मति हाथी बांधो सतत न छोरी, ऐसे कुछ पद है उनका। कि जिन्होंने कर्म की रस्सी से ऋषि मुनि देवता पितर सबको बांध कर रखा है, उन भगवान को यशोदा ने ऐसा बंधन में बांधा कि सकत न छोरी, वो अपने से नहीं खोल सके। माँ घर का काम कर रही थी और वे उखल में बंधे बंधे चुपचाप पड़े थे, खोल नहीं सके। नंद बाबा खोल सकते थे क्योंकि उनकी पत्नी बांधी थी, और कोई नहीं खोल रहा था, किसी को साहस नहीं हुआ कि कृष्ण को खोल दे। नंद बाबा आए पूछे कौन बांधा है, तो पता लगा कि उनकी भारजा यशोदा खोली है, तो वो जाकर खोल दिए। पिताजी खोल दिए, माँ बांधी थी, भगवान स्वयं नहीं खोल सके। तो एवं समदर्शिता यंग हरिणा भृत्य वश्यता, इस प्रकार भगवान दिखाते हैं अपना स्वभाव अपनी लीला करके कि मैं भक्तों के वश में। इस तरह भगवान से प्रेम करना चाहिए जैसे यशोदा ने किया। तो जब माँ घर के कामों में व्यग्र हो गई कृष्ण के सेवा के लिए दूसरे कामों में, तो श्री कृष्ण की दृष्टि दो वृक्षों पर पड़ी। यशोदा के आंगन में दो यमलाज अर्जुन के वृक्ष थे, यमल जोड़ा। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि इन दोनों का उद्धार करना चाहिए। हरीश्वरी जी ने लिखा है कि भगवान बंधे हैं लेकिन दूसरे को मुक्त करना चाहते हैं। ये उदार व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वयं दुख में रहता है फिर भी दूसरे का हित करता है। भगवान विपत्ति में है, बंधन में है, लेकिन दूसरे जीवों को मुक्त करने का सोचने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत धन होगा तब हम धर्म करेंगे। धर्म एक विचार है, वास्तव में कम धन से भी धर्म किया जा सकता है। भगवान स्वयं बंधन में है लेकिन उन्होंने सोचा कि इन वृक्षों का उद्धार करना चाहिए, और बकैया चलते हुए घसीटते हुए उखल को गए, दोनों वृक्षों के बीच से गुजरे। कृष्ण तो पार गए कर गए लेकिन तिर्यक होकर तिरछा होकर उखल अटक गए, और कृष्ण थोड़ा सा जोर लगाए तब तक चढ़ करके दोनों वृक्ष धराशायी घेर गए। अब सब लोग दौड़े अपना अपना काम धंधा छोड़कर, क्या हुआ आए बाप, ये बिना आंधी के तूफान के दोनों वृक्ष कैसे गिर गए। कुछ बच्चों ने देखा था कि कृष्ण खींचा इसी से गिरा, तो बच्चे कह रहे थे कि कृष्ण के खींचने से गिरा है, तो दूसरे लोग डांट डपट दिए चुप रहो, इसके खींचने से कैसे गिरेगा। तो वृक्षों के गिरने पर बड़ा अपशकुन जैसा हुआ वहां उन लोगों की दृष्टि में। उसी दिन उन लोग एक मीटिंग किए कि अब इस स्थान को छोड़ देना चाहिए, यहाँ बहुत विपत्ति आ रही है। उस दिन एक पूतना आई थी, तृणावर्त आया था, उस दिन ट्रक उलट गया, वो गाड़ी उलट गई, सकट उलट गया, आज वृक्ष गिर गए, किसी दिन घर ही गिर पड़ेगा। किसी तरह नारायण की कृपा से बच्चा बच रहा है, अब हम लोगों को इसको लेकर कहीं भाग जाना चाहिए, तब ये लोग गोकुल छोड़कर वृंदावन जाएंगे। उपनंद महाराज जो नंद जी के भाई थे, उन्होंने बताया कि ये स्थान छोड़ देना चाहिए। आज भी हम लोग देखे हैं जो लोग गौवे चराते हैं वन में, तो दो चार साल के बाद वो अपना स्थान छोड़ देते हैं, कहीं बछड़े मरने लगता है, कहीं कुछ होता है, तो बदलते रहते हैं, या गौवे घासों को चर जाती हैं तो फिर दूसरे स्थान पर जाते हैं। हम लोग देखे हैं पहाड़ों में घूम घूम कर प्रचार किए हैं। तो नंद बाबा समस्त गोपों के साथ वृंदावन चलेगा उसके बाद। तो हम कल ये कथा सुनाएंगे कि ये दोनों वृक्ष कौन थे और क्यों वृक्ष बने थे। ये कुबेर के पुत्र थे, जो कोषाध्यक्ष हैं देवताओं के, उनके पुत्र थे, बहुत धनी के पुत्र थे। साधारण धनी का लड़का तो इतना उदंड हो जाता है, वो लोग तो धनराज के पुत्र थे, धानद के पुत्र थे। देवताओं को जितने धन की जरूरत होती है सब कुबेर जी देते हैं, तो खजांची। और इस पृथ्वी से करोड़ों गुना ज्यादा धन वहां है। तो उनके दो लड़के इतने बदमाश हो गए कि वे नग्न स्नान करते थे गंगा जी में और स्त्रियों के साथ विहार करते थे। जब आदमी धन के नशा में हो जाता है तो समाज को केयर नहीं करता है कि क्या कोई कहता होगा। नंग धड़ंग घूमते थे और शिव जी के धाम में ये धन का इतना बड़ा प्रभाव होता है, देवता होकर के भी नग्न थे। और नारद जी ने उनको दंड दिया, वृक्ष बनाया कृपा करके। पहले से ये परंपरा है, नग्न व्यक्ति को देख करके डांटा जाता था, दंड दिया जाता था। आजकल तो किसी को कोई दंड नहीं दिया जा रहा है। हम देखते हैं अमेरिका में स्त्रियां कॉफिन पहन कर रहती, लंगोटा पहन कर रहती, ये उल्टा हो गया। पुरुष पैंट पहनते हैं और वो लोग लंगोटा काटते पहनते, ठीक उल्टा। नारद जी नलकुवर और मणिग्रीव को दंड दिए, कृपा किए, ब्रज में जन्म दिए वृक्ष के रूप में। केवल नग्न स्नान करने के कारण दंड दिया गया। बहुत सावधान रहना चाहिए, नग्न रहना एक सामाजिक अपराध है रियली, क्योंकि मनुष्यों का मन भगवान में लग नहीं रहा है, संसार में लगा हुआ है, विषय भोग में लगा हुआ है। तो यदि कोई नग्न होता है, शरीर को दिखाता है, तो मनुष्यों का चित्त भगवान में न लगकर विषय भोग में और लग जाता है, तो चेतना दूषित होती है। और चेतना दूषित करने से बढ़कर के और कोई अपराध नहीं है इस संसार में। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस न रह करके माया कॉन्शियसनेस हो जाता है। इसलिए अपने को ऐसा ढक करके रखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि हमारे चलते किसी के मन में कोई दुर्वासना न उत्पन्न होने पाए। ये भगवान ने नियम बनाया है। यदि कोई कहे कि हम नग्न रहेंगे इसमें दूसरे का क्या बिगड़ता है, तो तुम्हारे चलते दूसरे की चेतना दूषित होती है। और जब दूषित चेतना होगी तो कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, कृष्ण का स्मरण नहीं होगा तो ये सबसे बड़ी हानि है। इसके पीछे यह साइंस है। इसलिए शरीर को ढक कर रखना चाहिए। तो कल आप सुनेंगे किस तरह नलकुबर और मणिग्रीव अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे थे और नारद जी उन्हें दंडित किए, उनका उद्धार किए। हरे कृष्ण जय श्री।